पिछली बार मैंने आपको बताया था पवित्र आत्मा को संसार जो है ग्रहण नहीं कर सकता या दुनिया ग्रहण नहीं कर सकती, और उस बारे में हमने चर्चा किया था। हमने कहा था कि पवित्र शास्त्र के अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं या पवित्र आत्मा की बातों को जब आप ग्रहण करते हैं, यानी पवित्र आत्मा की बातों को सुन के उसके अनुसार जब आप कुछ करना शुरू करते हैं तो संसार जो है आपके खिलाफ हो जाता है। उसके बाद हमारे चर्च के दो स्मार्ट बच्चों ने सवाल पूछे थे। दो, एक ने पूछा था कि क्या हम स्कूल में अपने स्कूल में फ्रेंड्स बना सकते हैं, ये सारी बातें सुनने के बाद। और एक सवाल ये भी पूछा था कि हम पवित्र आत्मा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, और ये बच्चों ने पूछा है। अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि बच्चे ध्यान से सुनते हैं। दोनों अच्छे सवाल हैं। हम इस दुनिया के लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, बल्कि हमें करना भी चाहिए, लेकिन जब आप दुनिया के लोगों से यानी जो विश्वासी नहीं है उनके साथ जब आप दोस्ती करेंगे, मित्रता करेंगे, आपको पता चल जाएगा एक समय आता है जब आप उनकी बातों से सहमत नहीं होंगे, और फिर थोड़ा सा संघर्ष रहेगा आपकी दोस्ती में, आपकी मित्रता में। फिर धीरे धीरे या तो वो आपसे दूर चले जाएंगे या वो मसीही बन जाएंगे। एक लिमिट से, एक सीमा के बाहर आप उनके साथ दोस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनकी हर बातों से सहमत नहीं हो सकेंगे, और इस कारण या तो वो आपसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे, फिर आप उनको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, उसके बाद वो फैसला करेंगे आपके साथ दोस्ती रखनी है या नहीं रखनी है, या रखनी है तो भी कहाँ तक रखनी है वो निर्णय लेंगे, आपको निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं होगी। या फिर वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, फिर दोस्ती बरकरार रहेगी। दूसरा सवाल ये था कि हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कैसे करते हैं। अगर हम विश्वासी हैं, हमारे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का मतलब है कि पवित्र आत्मा जब हमें कुछ बताता है उन बातों को ग्रहण करना, और ग्रहण करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन बातों को समझना, उन बातों को समझने के बाद उसके अनुसार चलने को कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। अभी हम चलते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, क्योंकि पिछले बार हम वहां भी गए, उस पत्री में शायद गए थे। पिछले साल 2019 में हमने 19 के अंत में आपको हम लोग बीच बीच में याद दिलाते रहे कि हम ओवरकमर्स हैं या हम जयवंत हैं, हमने जय पाई है। और इस साल हमने लिखना शुरू किया प्रोजेक्टर में ताकि आपको दिखाई दे, चर्च में आते ही आपको दिखाई दे या बीच बीच में आपको दिखाई दे, ताकि आप भूल ना जाए। जैसे अभी लिखा है वी आर ओवरकमर्स, कि हम जयवंत हैं, हमने जय पाई है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा। कभी कभी होमवर्क चाहिए ताकि घर पे बैठ के जब आप बोर हो जाते हैं, जब सारे सीरियल्स ख़त्म हो जाते हैं टेलीविज़न में और आपके या मनपसंद का कोई सीरियल ना हो तो आपके पास कुछ काम होना चाहिए, है ना, या कंप्यूटर गेम सब खेल खेल के थक गए हैं या इंटरनेट नहीं है दूसरा नया गेम खेलने के लिए, तो आपके पास कुछ होना चाहिए। तो एक होमवर्क देता हूँ कि हम जो लिख रहे हैं कि हम ओवरकमर्स, वी आर ओवरकमर्स या हम जयवंत है, तो हमने किस पर जय पाई है आपको देखना है वचन से, व्हाट वी हैव ओवरकम, या किस तरह से हम जयवंत है, किस पर हमने जय पाई है, हु ऑल वी हैव ओवरकम सो फार। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए और ये वचन में है। तो आपका काम क्या है, होमवर्क क्या है, हमने किस पर जय पाई है, Who we have overcome. कुरिन्थियों की पत्री का दूसरा अध्याय में हम चलते हैं, और इस अध्याय में कुछ बात, इस पत्री में, इस दूसरे अध्याय में कुछ बातें हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री दूसरा अध्याय का 12वां पद को हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वे आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। आप सबने सुन लिया और आपने अपनी बाइबल में देख भी लिया होगा, यहां लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर बात कर रहा है विश्वासियों से, मसीही लोगों से, यीशु मसीह के अनुयायियों से, अगुओं से, सब लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है कि आपके पास जो आत्मा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते समय आपको मिला है, कौन से आत्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं इस समय, वो आत्मा जो आपको विश्वास करते समय यीशु मसीह के उस बलिदान पर जब आपने विश्वास किया, जब आपने उस सच्चाई को मान लिया कि आप पापी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पापी है, आप थे एक समय, में भी था, उस समय हमने ये मान लिया कि मैं पापी हूं और परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है, मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि यीशु मसीह ने मुझे मेरे पापों की माफी के लिए और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, उस समय जो आत्मा आपको मिला है वो इस संसार की आत्मा नहीं है सबसे पहले, और इस बात पर आपको क्या करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए कि आपको जो आत्मा दी है परमेश्वर, दिया है परमेश्वर ने, वो इस संसार की आत्मा नहीं है, परंतु वो किस तरह का आत्मा है, इसमें लिखा है कि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है, यानी वो परमेश्वर का आत्मा है, तो इस संसार की आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा है। तो आपके और मेरे पास किस प्रकार का आत्मा है, जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर की ओर से है। इस संसार की आत्मा परमेश्वर ने आपको नहीं दी है। कौन सी आत्मा आपको नहीं मिली है, इस संसार की आत्मा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना कि ये संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस संसार की रीति से, इस संसार के लोग सोचते हैं, इस संसार की विधियों के अनुसार वो चलते हैं, इस संसार का बनाया हुआ जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार इस संसार के लोग चलते हैं, और जब तक उसमें वो चलते रहेंगे परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने के लिए संसार से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने का मेरा मतलब ये नहीं कि ऊपर जाना होगा, बाहर निकलने का मतलब है कि संसारिक बातों से हटके सोचना होगा, तब हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर सकेंगे। परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, हमें पवित्र आत्मा देने के बाद, ये जो आत्मा आपको मिला है, मुझे मिला है, वो इस संसार की आत्मा नहीं है, ताकि हम संसार के अनुसार फिर से ना चले। हमें जो आत्मा मिला है वो परमेश्वर का आत्मा है, ताकि हम क्या कर सके, एक तो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल सके, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक मदद की जरूरत है। यहां पे लिखा है कि आपको यह मालूम चल जाए, इस पवित्र आत्मा के कारण आपको और मुझको यह मालूम चल जाए कि परमेश्वर ने आपको और मुझे मुफ्त में क्या क्या दिया है। लोग जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उसमें मुफ्त शब्द नहीं होगा, जो लोग अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं देखिए उसमें लिखा है कि द थिंग्स गॉड हैज गिवन टू अस फ्रीली, ये मुफ्त में मिला है आपको। तो इस पवित्र आत्मा का आपके पास होने का एक खास या एक विशेष कारण क्या है, आपको और मुझे पता चल जाए कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है। ध्यान दीजिए इस बात पर, आपके और मेरे पास बहुत कुछ है जिसके बारे में हमें मालूम हो जाना चाहिए। कितने समय से हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या चलने की कोशिश में हैं? क्या हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? इस संसार की रीति से जब हम सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। क्या यह हकीकत नहीं है? जिसके पास मोटरसाइकिल है वो इस बारे में सोचता है कि मेरे पास अभी कार नहीं है, ऐसा ही सोचते ना। जिसके पास दो क्या बोलते हैं 2 BHK दो बेडरूम का मकान है वो क्या सोचता है बैठ के, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, वो जब दूसरों के घर जाते हैं जिनका घर उससे भी बड़ा है, वो क्या सोचता है? वो क्या सोचता है? मेरे पास नहीं है इतना बड़ा मकान, उसको वो नहीं दिखता जो उसके पास है। ये संसार की रीति है। और हम विश्वासी लोग हर बात में ऐसे ही सोचते ना कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम सोचते हैं। कभी कभी कम से कम दिन में एक बार हम सोचते हैं ये मेरे पास नहीं है अभी, मुझे चाहिए। और जो हमारे पास है उसके बारे में कितने बार हम सोचते हैं? ईमानदारी से आपको हाथ खड़ा करने की बोलने की जरूरत नहीं, सोचिए कितने बार दिन में एक, कितनी बार हम दिन में या महीने में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सब चीजों के लिए जो हमारे पास है। सोचिए। और दूसरी बात, ये तो शारीरिक चीजें हैं जो आपको दिखती है, जो सामने है, मकान हुआ या कार हुई, ये सब चीजें आपके पास आपके इन आंखों से दिखती है। आपके पास ऐसा क्या क्या है जो परमेश्वर ने आपको दिया है जो आपको इन आंखों से नहीं दिखते? और ये आत्मा आपको इसलिए दिया है ताकि आपको पता चल जाए, मुझे पता चल जाए कि परमेश्वर ने मुझे क्या क्या दिया है। तो हमें इस महीने हमें क्या करना चाहिए? इस महीने हमने क्या कहा था, हम क्या क्या किस बात किन बातों पर ध्यान करेंगे? हम पवित्र आत्मा की बातों पर ध्यान करेंगे। तो इसलिए आज से आपका काम है, आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे कि मुझे बताओ ताकि मुझे पता चल जाए कि परमेश्वर ने मुझे क्या क्या दिया है, परमेश्वर की ओर से क्या क्या आपके पास है आपको पता चल जाए। योना की पहली पत्री का 4th chapter में, 1 John 4:1। अभी कुरिन्थियों की पत्री में हमने क्या सीखा? हमारे पास इस संसार की आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। इस पत्री में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4th chapter का पहला पद में, कि हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। प्रतीति करने का मतलब विश्वास मत करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। इसका मतलब दूसरी आत्माएं भी आपसे बात कर सकती है, बल्कि करती है। और आपको क्या बोला है? सारी आत्माओं का विश्वास मत करो। क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको संसार की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा की बातों पर ध्यान देना है। इस संसार की आत्मा आपसे बात करती रहेंगी। आपको इस संसार की आत्मा की बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। पढ़िए क्या लिखा है, हे प्रियो, परमेश्वर अपने प्यारे बच्चों से बात कर रहा है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो हर एक बात जो आपको सुनने को मिलती है इस संसार में रह के, वो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की ओर से हो। और आपको ये जिम्मेदारी परमेश्वर देता है कि आपको परखना है, पता करना है कि जो बातें आप तक पहुंच रही है वो किसकी ओर से है। जो बातें हम अखबार में पढ़ते हैं हमारे दिमाग में चली जाती है ना, हमारे मन में चली जाती है। जो बातें हम टेलीविजन में देखते हैं वो भी हमारे मन में चले जाती है। जो बातें हम स्कूल में पढ़ते हैं, दूसरों से सुनते हैं, ये सारी बातें हमारे दिमाग में जा रही है और उनमें से बहुत सारी बातें हमारे मन में बैठ जाती है। जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है कि मैं परखूं कि ये बातें जो मैं विश्वास करने जा रहा हूं या जिन बातों को मैं ग्रहण करने जा रहा हूं, सही मानने जा रहा हूं, ये परमेश्वर की ओर से है या इस संसार की बातें हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस संसार की आत्मा नहीं दी, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। और इस पवित्र आत्मा की सहायता से आपको मालूम चल जाएगा कि ये बातें जो मैं सुन रहा हूं, ये बातें जो मैं पढ़ रहा हूं, जो बातें मैं देख रहा हूं, इसमें परमेश्वर है कि नहीं। जिम्मेदारी किसको दी है? पास्टर को नहीं दी है परमेश्वर ने, हर एक विश्वासी को दी है। इसलिए हर एक के पास पवित्र आत्मा है। तो इस साल हम इसमें चलने की कोशिश करेंगे, और वो कब से शुरू करेंगे? इसी महीने आज से शुरू करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आप में से हर एक की जिम्मेदारी है कि जो बातें आप तक पहुंच रही है उसको परखें आप। हम वापस चलते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, और हम बहुत लंबा अध्ययन आज नहीं करेंगे। कुरिन्थियों की पत्री का उसी दूसरा अध्याय में चलते हैं, क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने हमें दी है उसके बारे में परमेश्वर एक और बात कहता है। हो सकता है कि हम इस पूरे महीने सिर्फ कुरिन्थियों की इसी पत्री में इसी इस दूसरे अध्याय में ही रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। 12वें पद में हमें बताया कि परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, यानी संसार की इस दुनिया की आत्मा नहीं है। 9वें पद को पढ़िए, उसमें लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमने अभी तक इन आंखों से नहीं देखी, बहुत सारी बातें हैं जो इन कानों से हमने अभी नहीं सुनी, ना ही हमारे समझ में आई है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, हमारे लिए रखी है। ये बातें जो ये जो वचन हम पढ़ रहे थे, इसमें जो बातें हम देख रहे हैं, ये क्या भविष्य की बातें हैं या वर्तमान की बातें हैं या बीते समय की बातें? जो आंखों ने नहीं देखी या जो कान ने नहीं सुनी, जो बातें हमारे अभी हमारी कल्पना में नहीं घुसी, ये कब की बात है? ये भविष्य की बातें बोल रहे हैं परमेश्वर या वर्तमान की बातें? ये वर्तमान की बातें हैं, अभी के लिए। ये आपके और मेरे यहाँ इस संसार से जाने के बाद की बातें नहीं है। यीशु मसीह के हमें ले जाने के लिए जो यीशु मसीह का जो आना है उसके बाद की बातें नहीं है, ये अभी की बातें हैं। यानी इस संसार में यीशु मसीह के बन के रहने के लिए आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए। जो सिर्फ पवित्र आत्मा ही आपको बता सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं नहीं बता सकता। ये पवित्र आत्मा ही आप पर जाहिर कर सकता है, मुझ पर कर सकता है, मेरे जीवन को लेके। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, परमेश्वर हम पर जाहिर करना चाहता है। पवित्र आत्मा का मेरे और आपके पास होने का एक कारण ये है। इन दिनों में थोड़ा सा समय निकालिए, यूहन्ना का सुसमाचार को पढ़िए, 14, 15 और 16 अध्यायों को पढ़िए, और देखिए पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने क्या सिखाया था। क्या प्रभु ने ये नहीं कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सत्य की ओर ले जाएगा, यानी इस परमेश्वर के सारे सत्यों के विषय में वो तुम्हें बताएगा। यानी परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमें नहीं मालूम है, बहुत सारी बातें जो वचन में है लेकिन हमें समझ नहीं आती, वो पवित्र आत्मा समझाएगा। या यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा? क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरी गवाही देगा तुम्हें, यानी मेरे बारे में तुम्हें बताएगा, यानी मेरा परिचय कराएगा कि मैं कौन हूं? इसका मतलब यह है ना कि अभी हम अच्छी तरह से नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है, या क्या हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानते हैं? कोई कह सकता है? कल हमने बाइबल कॉलेज में इस बारे में अध्ययन किया था, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन जब शुरू किया था, तो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट से पूछ लेना क्या कल हमने क्या चर्चा की। यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया हमें ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, इतना मालूम था कि यीशु मसीह मुझे अपने पापों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर लहू बहाया, और उसी यीशु को मानने से या उस काम पर विश्वास करने से जो यीशु मसीह ने किया है मुझे उद्धार मिलेगा। इतना मालूम था, हमने विश्वास किया। उस यीशु मसीह के बारे में ज्यादा कुछ उस समय नहीं जानते थे, लेकिन क्या अभी यह जानते हैं हम? पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि वो यीशु मसीह के बारे में आपको और सिखाए, ताकि आप यीशु मसीह को पहचानना शुरू करें। क्या पौलुस ने इफिसियों की पत्री में पहला अध्याय में एक प्रार्थना नहीं की सारे विश्वासियों के लिए? वो प्रार्थना क्या थी? वो कहता है कि मैं इसलिए, जब से मुझे पता चला कि तुमने विश्वास किया, उस समय से विश्वासियों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, यानी मैं लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और समझ दे, आत्मिक बुद्धि और समझ दे, ताकि तुम परमेश्वर को पहचान सको। तो ये पवित्र आत्मा जो मेरे पास है, जो आपके पास है, इस पवित्र आत्मा का एक मुख्य काम है कि आपको समझ दे, आपको बुद्धि दे परमेश्वर के बारे में। इस हफ्ते हम इस बारे में, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और पवित्र आत्मा से पूछेंगे। हर रोज सुबह उठ के एक बार तो पूछ सकते हैं ना हम, कि पवित्र आत्मा मुझे बताओ परमेश्वर ने मुझे क्या क्या दी है, क्या क्या मेरे पास है जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा, बताएगा। इस कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस लिखता है, या पवित्र आत्मा की ओर से पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए लिखी है वो अभी हमें नहीं दिखाई दे रही है, ना हमें उस बारे में कुछ सुनाई दे रहा है, ना ही हमारी कल्पना में है वो, लेकिन आत्मा हमें बताता है। पौलुस अपने विषय में कहता है कि मेरे पास है जानकारी मेरे लिए, क्योंकि आत्मा ने मुझ पर जाहिर किया है। और वो फिर ये कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ये बात आपको मालूम है? पौलुस कहता है कि मैं बताना चाहता हूं लेकिन मैं बता नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि अभी भी तुम उन बातों को समझने के लिए चाहत नहीं रखते हो, क्योंकि तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा जो ध्यान जो है, अभी भी पवित्र आत्मा की ओर नहीं है। तुम संसारिक रीति से चलते हो, यानी पुराने विचारों में चलते हो। क्या आपको पढ़ने को मिलेगा तीसरा अध्याय में वो कहता है, हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। पौलुस बहुत कुछ बताना चाहता था, बहुत कुछ सिखाना चाहता था जो पवित्र आत्मा से मिला था, लेकिन कहते हैं कि मैं जब तुम्हारे पास आए ना, मैं तुम्हें नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक बातें समझने के लिए तुम्हारे अंदर चाहत नहीं थी, ना रुचि थी। कारण क्या है? क्योंकि तुम अभी भी पुराने विचारों में चल रहे हो, यानी तुम बिल्कुल उन बच्चों के समान हो, जो छोटे छोटे बच्चे होते ना, उनको आप ज्यादा कुछ समझा नहीं सकते। तो मसीह में तुम बालक हो, छोटे बच्चे हो। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ध्यान रखना, मैं जो बात अभी बता रहा हूं ना, ये बहुत जरूरी बात है और इसको ध्यान से सुनिएगा। कुरिन्थियों की पत्री में हम क्या देखते हैं? जब 12वां अध्याय में आप पहुंचते हैं, आप क्या देखते हैं कि आपको पता चल जाता है कि वहां पे जो विश्वासी लोग थे कुरिन्थुस में, वो सबके सब आत्मिक वरदानों में चलने वाले थे। कैसे चलने वाले थे? आत्मा के वरदानों में चलने वाले लोग थे, ध्यान रखना। यानी वहां के विश्वासी सबके सब अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते थे, करते थे, क्या कर सकते करते थे, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे, अन्य भाषा में बोलकर चर्च में उसका अनुवाद करते थे, भविष्यवाणी करते थे, क्या करते थे, चर्च में भविष्यवाणी करते थे, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, आत्माओं की परख, ये सब कुछ उन विश्वासियों में पाया जाता था, चंगाइयां होती थी, विश्वास जो साधारण विश्वास नहीं, सुपरनैचुरल फेथ जो परमेश्वर विश्वास देता है, उस ऐसा विश्वास को, ऐसे विश्वास में चलने वाले लोग थे। कौन सा रह गया, चमत्कार और चिन्ह उस चर्च में या वहां के चर्चस में होते थे। सुन लिया आपने, बहुत ही बढ़िया कलीसिया है ना, सारे के सारे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, अनुवाद करते हैं, भविष्यवाणी होती है, चंगाई और चमत्कार चिन्ह सब कुछ, फिर उस चर्च में कमी क्या है, कुछ कमी है, आप सोचिए। अगर अगर हमारे इस चर्च में हर संडे चमत्कार होना शुरू हो जाए, हर संडे चंगाइयां हो, चंगाइयां जो पता चल जाएगी होगी, यहाँ पे चंगाई होती है लेकिन बाद में पता चलता है कि हुई, और इसके बाद में चंगाई होने के बाद कोई चर्चा भी नहीं करता कि हाँ मैं ठीक हो गया था, पूछे तो बताते, नहीं तो नहीं बताते यहाँ पे, क्योंकि एक आम बात हो गई हमारे लिए, है ना, इसलिए नहीं बताते, पहले पहले बताते शुरू शुरू में, अब तो एक नॉर्मल बात हो गई, यहाँ आ गए और परमेश्वर ने पकड़ लिया कि किसी को ये है किसी को वो है, परमेश्वर ठीक कर देता है, इसलिए नॉर्मल बात हो गई हमारे लिए, अच्छी बात है। तो कोरिन्थुस में जो चर्च, जो कलीसिया थी, उसमें भी ऐसे ही था, चमत्कार नहीं था कि नॉर्मल होता था, हाँ जी दिल में छेद था, डॉक्टर ने बताया यहाँ प्रार्थना हुई ठीक हुआ, नॉर्मल बात है, हम शोर नहीं मचाते, ऐसा हुआ था ना हमारे चर्च में, ऐसा हुआ था, ठीक है नॉर्मल बात है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि परमेश्वर करता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो अन्य भाषा में बोलना, उसका अनुवाद करना, भविष्यवाणी करना, चंगा करना या चमत्कार करना या चिन्ह होना, बड़े बड़े काम होना, ये सब कुछ कौन करता है, ये यीशु मसीह करता है, हमने नहीं किया। तो लोग जो परमेश्वर से सुन के बोल रहे थे, वो परमेश्वर ने सुनाया है। तो ऐसे चर्चेस को देखते हुए या ऐसे कामों को देखते हुए हम ये सोच रहे थे कि हमारी कली हम लोग बहुत सही चल रहे हैं। इस गलत फहमी में रहते हैं सब। अगर हर संडे चंगाई हो, हर संडे चमत्कार हो, हर संडे कुछ संदेश हो, भविष्यवाणी हो, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी चर्च जो है बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सब कुछ हम नहीं कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा कर रहा है, पवित्र आत्मा बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आत्मिक वरदानों को देखने के बाद हम सोचते हैं कि हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। आत्मा के द्वारा चलने में और आत्मिक वरदानों में चलने में फर्क है, क्योंकि आत्मिक वरदानों में चलने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तैयार रहना है, आत्मा अपना काम करेगा, आपका मुंह खोलना है और अन्य भाषा में बोलना है, मुंह खोलना है, भविष्यवाणी करनी है। आत्मिक वरदानों में चलने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। लेकिन आत्मा के द्वारा चलने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आत्मा के द्वारा चलने का मतलब है कि अपने पुराने विचारों से हटकर परमेश्वर के विचारों के अनुसार चलना। जो बातें परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट की है, उन बातों के अनुसार चलना। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, ऐसा होता ना आपके साथ, जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं एकदम कुछ बात समझ आई आपको, ऐसा हुआ ना आप लोगों के साथ, जो सारे इधर वालों के साथ हुआ, इधर वालों के एक जन के साथ हुआ है आपको, हुआ ना कि आप जोश में आए, कई बार फोन भी किया मुझे, आज मुझे ये समझ आया, अच्छा इतने से महीनों से मैं समझा रहा था, नहीं समझाया कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा ने समझाया, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम ही यही है, वो जब समझाता है तो समझ आता है, अच्छी बात है ना, हम समझाए हमारे समझाने से नहीं समझाए कोई बात नहीं, परमेश्वर समझाता तो समझ आता है, तो जोश में आके फोन भी करता है या फिर गवाही देता है कि मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो अधिकतर लोगों के साथ हुआ ना ऐसा, ये कुछ पढ़ा और एकदम समझ आया, तो जो समझ आता है ना उसके अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं, तो आपके लिए ये कहा जा सकता है या कहा जाता है कि ये आत्मा के द्वारा आप चल रहा है। आत्मा के द्वारा चलाए चल रहा है। कुरिन्थुस की कलीसिया में इस बात की कमी थी। कैसे पता है? तीसरा अध्याय का पहला पद में वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे बीच में आया तो आत्मिक बातें तुम्हें नहीं समझा सका क्योंकि तुम शारीरिक रीति से चल रहे थे, परमेश्वर के विचारों के अनुसार नहीं चल रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उस चर्च में काम नहीं कर रहा था, पवित्र आत्मा का काम खूब हो रहा था उस चर्च में। इसलिए तो उनको समझाया गया कि जब तुम भविष्यवाणी करते हो दो या तीन जन करे, क्योंकि सारे करते हो, आराम से करें, एक एक बारी बारी से करें। ये सब इसलिए सिखाया गया क्योंकि वो कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी क्योंकि सारे खड़े हो जाते एक साथ भविष्यवाणी करने के लिए, भाई बैठ जाओ एक एक करके करो, फिर उसको समझो, उसको परखो। ये सब अच्छा काम हो रहा था, पर पवित्र आत्मा का काम हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे थे। उनके अपने जीवन में, उनके अपने चरित्र में उनको सुधार लाने की जरूरत थी, आत्मा के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने विचारों को बदलने की और चलने की जरूरत थी। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आपके द्वारा चंगाइयां हो रही है, आपके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, आपके द्वारा भविष्यवाणी आ रही है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हो। ऐसा करने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को बदलने की जरूरत है और परमेश्वर के विचारों के अनुसार चलने की जरूरत है। तो इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे, कौन सा पद आपको याद रखना है? कुरिन्थियों की पत्रिका, पहली पत्रिका दूसरा अध्याय का 12वां पद, जिसमें लिखा है कि मुझे संसार की आत्मा नहीं मिली, परंतु मेरे पास वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से मिला है, ताकि मैं उन बातों को समझ सकूं जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिली है। और ध्यान रखिए, ये मुफ्त में मिली है, आपने कोई मेहनत नहीं करी, मुफ्त में मिली है, इफ़रात से मिली है। परमेश्वर ने कंजूसी करके, थोड़ा थोड़ा करके नहीं दिया कि चलो अमित की हाइट कम है कम देता, पास्टर राहुल की हाइट ज्यादा है तो ज्यादा, ऐसा नहीं दिया परमेश्वर ने, इफ़रात से दिया सबको। तो हम उन सब बातों को जो हमें मुफ्त में और बहुताय से मिली है जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पासवर्ड क्या है अनलॉक करने के लिए? पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा से पूछेंगे। सुबह उठ के पूछने की गलती करके देखो आप, कल सुबह उठते ही सबसे पहले पूछ के देखिए, पवित्र आत्मा मुझे बताओ मुझे परमेश्वर ने क्या क्या दिया है, पूछ के देखिए। फिर दिन भर आपके पास आता रहेगा इन्फॉर्मेशन, मतलब आता रहेगा, मतलब जानकारी आती रहेगी, समझ मिलती रहेगी। और इसको फट से आप अपने सेलफोन में नोट्स में लिख लेना। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, आप ये गलती करके देखिए। बहुत सारी बातें आपको समझ आएगी, परमेश्वर दिखाता रहेगा आपको। तो इस हफ्ते आप कोशिश करेंगे ना, कल से करके देखिए, फिर जो बातें समझ आती है, जो बातें नहीं समझ आती उसके लिए नहीं कह रहा हूं, जो बातें आपको समझ आती है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तब और समझ मिलेगी और सामर्थ्य हो जाएंगे, और भी अच्छी तरह आत्मा के अनुसार आप चलना शुरू करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं इस प्रार्थना के साथ। आइए एक बार हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए भी चाहता हूँ, आपके लिए भी चाहता हूँ कि हम इस प्रैक्टिस में, इस अभ्यास में कामयाब हो। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो हमने अभी कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा परमेश्वर, कि हमारे पास संसार की आत्मा नहीं, हमारे पास वो आत्मा है जो प्रभु तूने दिया है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। इस पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर हम उन सब बातों को जान पाएंगे जो तूने हमें दी है, जो तूने हमें मुफ्त में दी है प्रभु। और हम चाहते हैं परमेश्वर कि हम इस बात को भूल ना जाएं, हम चाहते हैं कि हर रोज हम तुझसे पूछना ना भूले प्रभु, हम पवित्र आत्मा से पूछना ना भूले, हम पर तेरा अनुग्रह हो। और इस पूरे हफ्ते हम उन बातों को समझ भी सके और उसमें चल भी सके प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।